सुधीर कुमार शर्मा, बीए पार्ट थर्ड। आज आपको मुगलों की कृषि नीति पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, जो एलपी शर्मा के बुक से ली गई है। भारत की बहुसंख्यक प्रजा का मुख्य व्यवसाय था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा था कि तत्कालीन भारत में बादशाह भूमि का एक छत्र स्वामी था, परंतु वर्नियर का यह कथन भ्रमात्मक है। बादशाह भूमि का नहीं स्वामी था, भूमि का स्वामी तो कृषक ही होता था, परंतु क्योंकि मुगलों बादशाहों की आय का मुख्य साधन भूमि उत्पादन से लिए जाने वाला कर ही था, लगान या खराज था, इस कारण प्रत्येक बादशाह यह चाहता था कि कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो और कोई भी भूमि जिस पर खेती हो सकती थी वह बिना खेती के न रहे। इस कारण यदि कोई व्यक्ति खेती योग्य भूमि पर खेती करने में असमर्थ हो जाता था तो बादशाह उस भूमि को किसी खेती करने वाले व्यक्ति को देने का अधिकार रखता था। यद्यपि भूमि का मालिक वही व्यक्ति रहता था जिसकी वह भूमि थी, इस रूप में ही बादशाह को भूमि का स्वामी माना जाता था। अन्यथा जब तक किसान अपना लगान देता रहता था तब तक ही वह भूमि का स्वामी था, परंतु कृषक समान स्तर के नहीं थे। मुगलकालीन कृषक समाज तीन वर्गों में विभाजित था। प्रथम खुद काश्त किसान था, जो अपने ही गांव में अपनी भूमि पर खेती करता था। खुद काश्त को अपनी भूमि को बटाई पर देने का तथा बेचने का अधिकार होता था, इन्हें माली के जमीन भी कहा जाता था। द्वितीय यही काश्त किसान जो गांव में जाकर खेती करता था और अस्थायी रूप से निवास करता था, और तृतीय मुजारियात किसान जो अपनी भूमि से होने वाली आय को अपने परिवार के लिए पर्याप्त नहीं मानता था, इस कारण अधिक भूमि वाले व्यक्ति से किराएदार के रूप में खेती वाली जमीन लेता था। इस प्रकार किसानों के अतिरिक्त गांव में एक ऐसा वर्ग भी था जिन्हें कृषक मजदूर माना जाता था। उस काल में खेती में प्रयोग आने वाले साधनों और उत्पादन औजारों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश था माना जाता था। कृषि में प्रायः वे सभी साधन प्रयोग में लाए जाते थे जो भारत में 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक थे। भूमि से दो फसलें और कभी कभी तीन फसलें भी तैयार की जाती थीं, और फसलों में हेर फेर करके फसलें तैयार करने की जानकारी भी भारतीयों को थी। कृषक मवेशी भी अच्छी संख्या में पालते थे। अबुल फजल के कथानुसार एक किसान को 4 बैल, 2 गाय और 1 भैंस बिना पशु कर दिए पालने की अनुमति थी। गेहूं, चना, जौ, बाजरा, मक्का, गन्ना, अफीम, नील, पोस्त आदि की खेती देश के विभिन्न भागों में होती थी। गेहूं की उपज मुख्यतया पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती थी। गन्ना मुख्यतया बंगाल और बिहार में, चना और जौ पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में, बाजरा और मक्का उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, नील मुख्यतया बयाना जिले में, अफीम मुख्यतया मालवा और बिहार में, कपास देश के विभिन्न भागों में तथा चावल मद्रास, कश्मीर आदि स्थानों में उत्पन्न किया जाता था। आईने अकबरी में रबी, कोष्टक बसंत, कोष्टक बंद की 16 फसलों तथा खरीफ शरद ऋतु, कोष्टक बंद की 25 फसलों से प्राप्त होने वाले राजस्व का विस्तृत उल्लेख मिलता है। सिंचाई के लिए किसान वर्षा, कुओं, तालाबों, नदियों और नहरों पर निर्भर करते थे, परंतु सिंचाई के कृत्रिम साधनों के अभाव में विशेष उन्नति नहीं की गई थी। भारत में तंबाकू 1604 ईस्वी के अंत अथवा 1605 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के काल में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। इसी के आसपास मक्का अमेरिका से भारत लाया गया। समय समय पर किसानों को अकाल की समस्या का सामना करना पड़ता था। मुगल काल में कई अवसरों पर गंभीर अकाल पड़े थे। अकाल के समय महामारी और भयंकर बीमारियां भी आती थीं। प्लेग और हैजा समय समय पर लाखों व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बने थे। राज्य की ओर से ऐसे अवसरों पर किसानों की सहायता दी जाती थी, परंतु आवागमन के साधनों तथा योग्य चिकित्सकों के अभाव में यह सहायता सर्वदा अपर्याप्त होती थी। शाहजहां ने अकाल से निपटने के लिए सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था की। उसने 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनवाई, जिसे नहर ए फैज कहा जाता था। ऐसे अवसरों पर गांव के गांव उजड़ जाते थे और कृषि नष्ट हो जाती थी। इसके अतिरिक्त जंगली जानवर भी खेती को पर्याप्त हानि पहुंचाते थे, क्योंकि उस समय जंगल और जानवर दोनों ही अधिक थे। किसानों पर कर का भार भी कुछ कम ना था। अकबर और जहांगीर के समय को छोड़कर किसानों से पर्याप्त कर लिए जाते थे और बादशाहों के आदेश के विरुद्ध भी स्थानीय अधिकारी किसानों को तंग करते थे। निरंतर युद्ध और विद्रोह भी कृषि के लिए हानिकारक थे, परंतु इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी कृषि की दृष्टि से देश आत्मनिर्भर था। और क्योंकि किसानों की जीवन की आवश्यकताएं न्यूनतम थी, एते वे विशेष कठिनाइयों का अनुभव नहीं करते थे। मुगल काल में नई भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए बनकटी अर्थात जंगलों को साफ कर जमीन को खेती योग्य बनाना नामक एक तरीका अपनाया गया, जिससे अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके। मध्य युग के इतिहास में अन्य देशों की शासन व्यवस्था की तुलना करते हुए अथवा मुगलों से पहले के समय की किसानों की स्थिति पर दृष्टिपात करते हुए यह कहा जा सकता है कि शाहजहां के समय तक उनकी स्थिति पर्याप्त ठीक थी।